राव्या बड़े प्यार से अनंत के होठों पर हल्के हल्के किस कर रही थी, तो वहीं बेचारे अनंत की मुट्ठियां बेडशीट पर पूरी तरह कसी हुई थीं। उसका मन कर रहा था कि वो भी राव्या को किस बैक करे, पर उसकी बीवी उसके ऐसा करते ही उससे दूर हो जाएगी, इसका डर उसे सता रहा था। आखिर में उसके बर्दाश्त की हद पार हो गई और उसने एक झटके से राव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसे किस बैक करना शुरू कर दिया। उसके ऐसे करते ही राव्या ने झूठ-मूठ अपनी आंखें खोली और एक झटके से राव्या अनंत को खुद से दूर करते हुए बोली, पतिदेव आप डील भूल गए क्या? मैंने क्या कहा था? ये सिर्फ वन साइड किस हो सकता है? अनंत ने झुंझलाते हुए कहा, कैसे बकवास कर रहे हो यार, वन साइड तो लव या हेट होता है ना कि किस। कब से वन साइड किस होने लगा? जो दोनों तरफ से ही हो सकती है। मैं कैसे कंट्रोल करूं खुद को? ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज इतनी जोर में मत करो मुझ पर, राव्या ने आई थिंक करते हुए कहा। अब तो ये आपकी बीवी आप पर बहुत सारे जुर्म करेगी जब तक कि मेरी आत्मा को संतुष्टि ना मिल जाए कि मैं आपको अपने किए का पूरा पूरा फल दे दिया है। आइंदा से जब भी आप मुझे झूठ बोलेंगे आपको हजार बार ये पांच दिन याद आएंगे और आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। इतना बोलकर राव्या ने बड़े स्टाइल से अपने बालों को झटका तो वहीं अनंत का मुंह बन गया। उसने फिर से बच्चों की तरह उसके करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रब करते हुए कहा, ठीक है बच्चे जैसा तुम बोलो। उसकी इस बात पर राव्या को हंसी आ गई और उसने फिर से उसके होठों को अपने मुंह में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार भी वो बड़े प्यार से अनंत को किस कर रही थी जिसकी वजह से अनंत के शरीर को मानो झटके मिल रहे थे। बार बार उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसे अजीब सी ठंड लग रही थी। हिम्मत करते हुए उसने अपने दोनों हाथ राव्या की कमर पर रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता राव्या की कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। राव्या भी उसे किस करने में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला उसका पति रूल्स ब्रेक कर रहा है, क्योंकि राव्या ने उससे कहा था कि वो उसे टच भी नहीं करेगा जब तक कि उसकी सजा पूरी नहीं होगी। वहीं होटल रूम में इमामी वापस आ चुकी थी और वो बेचैनी से पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर वो एक बार जोर से चिल्लाई और फिर बेड पर लात मारते हुए बोली, कैसे हो सकता है? राव्या मुझे इतनी आसानी से नहीं जीत सकती है। मैं आनंद को उससे दूर करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर वो बेड पर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अब नया प्लान सोचना चाहती थी। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर से उसके पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ उसकी माँ थी। उसने हिम्मत करते हुए अपना फोन उठाया और फिर मंजू को कॉल किया। मंजू तो अपना काम कर रही थी। उसने फिर से अपनी बेटी का कॉल आता देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ उसका कॉल पिक कर लिया और फिर अगले ही पल खुश होते हुए बोली, क्या गुड न्यूज़ है बताओ मुझे? इमामी ने रुंधी आवाज में कहा, कोई गुड न्यूज़ नहीं है मम्मी, उस राव्या ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ऊपर से जीजू भी उसकी साइड हो गए और आपको पता है आज राव्या ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे गाल पर अभी भी दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इमामी की बात सुनकर मंजू ने गुस्से में मुठ्ठियां कसते हुए कहा, मेरी बेटी पर हाथ उठाया? हरामजादी की इतनी हिम्मत? तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ भी इंडिया आ रही है, मैं भी देखती हूँ कि वो कब तक अपनी खुशहाल जिंदगी जी पाती है। ये सुनकर इमामी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसका दुख पल भर में छूमंतर हो गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम, और पापा को भी साथ ले आना, फिर हम मिस्टर चटवानी के साथ मिलकर प्लान बनाएंगे और वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सुनकर मंजू भी हल्के से मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा तुम अपना ख्याल रखना, फिर ज्यादा रोना धोना मत करना, तुम्हारी माँ जब तक है तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इमामी खुश हो गई पर अपना कॉल कर करके गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर मॉम हो तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी, जो कभी भी किसी भी मुसीबत में अकेला ना छोड़े। ये सोचकर इमामी खुद में ही खुश हो गई और फिर फ्रेश होकर सो गई, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ पर वो ना किसी को जानती थी जिसके साथ वो आउटिंग पर जा पाए। होटल का कमरा ही अब उसके लिए घर बन चुका था। राव्या अपनी पूरी मनमानी अनंत के साथ पूरी कर चुकी थी। अब उसे अनंत का वो लाल बेबस चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। वहीं अनंत की आंखें नशीली हो चुकी थीं। उसे ही पता था कि वो खुद को कैसे काबू कर रहा है। उसे जब लगा कि राव्या अब उससे दूर हो चुकी है और उसके पास नहीं आने वाली है, तो वो जल्दी से बेड से उठते हुए बोला, मैं कोल्ड शावर लेकर आता हूँ क्योंकि मेरे शरीर के पूरे तार झंझना चुके हैं, उन्हें शांत करना जरूरी है। ये सुनकर राव्या को बहुत हंसी आई तो वहीं अनंत तेज कदमों से बाथरूम में चला गया। अंदर शावर लेते वक्त भी उसकी हालत खराब हो रही थी। बार बार उसके हाथ मचल रहे थे जैसे अभी अगर राव्या उसके सामने होती तो वो उसे दबोच लेता, पर अफसोस ये सब कुछ वो सिर्फ सोच ही सकता था, असलियत में नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद सब लोग माधवी का मंगवाया हुआ डिनर करते हैं। खाना खाते वक्त अना ही एक्साइटेड होकर पूछता है, ताई जी ऐसा भी क्या हुआ है कि आपने सबको इतनी अच्छी ट्रीट दी है? क्या ताऊ जी ने कोई डील क्रैक की है या फिर आपके पास कोई गुड न्यूज है? माधवी मुस्कुराई और फिर अनाही की तरफ देखते हुए बोली, गुड न्यूज तो है बहू, पर मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ, वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित है। आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? अनाही ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मैं विवाह को बहुत मिस कर रही हूँ, और फिर मुस्कुराते हुए अपना खाना इंजॉय करने लगी। बाकी किसी को समझ आया हो या ना आया हो, पर माधवी को उसका ये तन जरूर समझ आ गया था, क्योंकि अगर इस वक्त विहार डाइनिंग टेबल पर होती तो जरूर माधवी के चेहरे पर 12 बजा देती। उसकी बातें ही ऐसी होती हैं। रूहान एक साइड में बैठकर बड़े शांति से डिनर कर रहा था। आज वो अनाही की तरफ नहीं बैठा था। ये देखकर माधवी के चेहरे की स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार रूहान को पूछ रही थी कि बेटा और क्या लोगे, बेटा ये भी खाकर देखो, बेटा वो भी खाकर देखो, जिसे अनाही ने अपने मन ही मन कहा, मेरे रूहान जी पर ऐसे आ रही है जैसे मधुमक्खियां शहद पर मंडराती हैं। पर अफसोस, मैं अपने रूहान जी को हमेशा अपने पास रखूंगी और कभी तुम जैसी गंदी औरत की नजरें उस पर नहीं पड़ने दूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। अनाही के दिल में अब माधवी के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं बची थी और उसे माधवी से नफरत होने लगी थी। थोड़ी देर बाद सबका डिनर खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अनाही किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी, क्योंकि उसे रात को ऑफिस का काम करना था। दिन तो उसने लड़ाई झगड़े में ही बर्बाद कर दिया था और खाना खाने के बाद अक्सर नींद आ जाती है, और नींद उड़ाने का सबसे अच्छा काम अनाही के लिए कॉफी करती है। रूहान भी किसी बहाने से किचन में जाता है। वहां जाकर वो सबसे पहले अनाही को गले लगाता है और फिर आहिस्ता से उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, कैसी चोट है आपकी? अनाही हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छी है। मुझे आपको बताना था कि मुझे पद भैया के कमरे में एक तेजाब की बोतल मिली। पता नहीं वो उसे रूही के साथ क्या करना चाहते थे। मुझे तो उस मासूम की शक्ल याद करके ही डर लगने लगा है। ये सुनकर रूहान की भी मुट्ठियां कस गईं।
फिर उसने प्यार से अनाही के गाल को अपने हाथ में भरते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, मैं रूही को कुछ नहीं होने दूंगा, हम मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर अनाही ने सुकून से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब तक हम दोनों साथ हैं मुझे वैसे भी किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। मैं इस स्टोरी को प्रतिलिपि पर भी अपलोड करती हूँ एंड वहाँ अपलोड करने से पहले दोबारा एडिट करती हूँ। अब मैंने देखा यहाँ कितनी मिस्टेक की है मैंने, सॉरी फॉर दैट। वहाँ मैं एक भी मिस्टेक नहीं रहने दूंगी।